धोखा कैसे खाता है इंसान? कैसे है धोखे का सामान? ये नहीं का मतलब है कि कुछ है ही नहीं है, फेक है बस, इस तरह उस तरह, ये नहीं है मतलब इसका। धोखे का मतलब होता क्या है? इंसान ने कैसे इस दुनिया से धोखा खाई है? अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे तो आप क्या इसका जवाब देंगे कि इसका धोखा क्या है और कैसे इंसान इसमें धोखा खाता है? असल में इंसान को ऐसे लगता है इसकी चकाचौंध, इसकी जो अट्रैक्शंस हैं कि जो बस यही है, यही है सब कुछ यही है। हालांकि ये वो नहीं है जो नजर आता है। ये क्या है? ये तो इसकी वैल्यू हदीस में आता है कि अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना देता। यानी इसकी तो इतनी भी वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका धोखा ये है, जो इसकी अट्रैक्शन है ना, ये ऐसे लगती है कि वो इतनी ग्लिटरिंग, इतनी अल्लाह तला ने बनाया है। इन्ना जालना माल अर्दी जीनत अल्लाह, सूरह काहफ में आप पढ़ते हैं इसको, खूबसूरत अल्लाह ने बनाया जो कुछ भी यहाँ पे है। इसकी इतनी अट्रैक्शन है कि ऐसे लगता है कि यही वैल्यूएबल है, यही असल है, लेकिन ये धोखा है। ये जो नजर आ रही है वैसे नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मगर यही सारी वैल्यूएबल लगती है। ये है इसका धोखा। अब इंसान अपनी जिंदगी इस पे लगा लेता है, अपनी मेहनत इस पे लगा लेता है, अपनी जवानी है इसके लिए खपा देता है, क्योंकि उसको लगता है ना कि ये बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है, मैं इसको हासिल कर लूं। और जब लगा के वहां पे आखरत में जाएगा तो पता चलेगा भाई ये तो कुछ भी नहीं थी, मैं किसके पीछे लगाया, ये धोखा है। फिर उसको पता चलेगा मैंने धोखा खा लिया। कुछ समझ आ रही बात के? नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप पहले समझे मेरी बात को कि मैं कहना क्या चाह रही। ये जो इसकी ब्यूटी है, जो इसकी अट्रैक्शन है, इसके अंदर है धोखा छुपा हुआ। ठीक है? और जैसे कि हमें बताया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इसकी एक इससे भी इसके धोखे का पता चलता है कि फरमाया अल्लाह की कसम दुनिया आखरत के मुकाबले में ऐसी है जैसे कोई शख्स अपनी उंगली समंदर में डबोले और इस उंगली के पानी को समुंदर के पानी के मुकाबले में जो निस्बत है वो ही है इस दुनिया की निस्बत आखरत के मुकाबले में। अब देखिए, ये आजकल मौसम अच्छा है ना, आप में से जो लोग भी कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे समुंदर है, बीच है, तो वो बीच पे जाएं। आप होमवर्क समझ लें, जो कर सकता है, सारे नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है, तो ये अपना होमवर्क समझें। क्या आप सूरज निकलना देखें, वहां पे सूरज तुलू होना, सनराइज देखें, उसके भी अल्लाह की कुदरत देखें, और अपनी उंगली को आपने समुंदर में के पानी में डबोना और निकालना। ठीक है? जो लहर आ रही होगी एक, उसमें ये जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना, फिर आपको असल मजा आएगा इस हदीस का। ये जरूर करके देखिएगा। मुझे पता है कि इसमें मैंने देखा है कि इसमें कितना उस वक्त इंसान को वो जो फीलिंग आती है ना, वो ऐसे मेरी बात बताने से नहीं आ सकती। तो वो आप जब आपकी उंगली पे पानी लगेगा ना, फिर उस पानी को देखिएगा और वो हद्दे निगाह तक जो समंदर है ना, फिर उसको देखिएगा, फिर बताइएगा कैसा लगता है। लेकिन क्या बात है कि ये जो उंगली पे लगा हुआ पानी है, यही है धोखा कि इंसान को लगता है ओ ये हर चीज यही है, दिस इज एवरीथिंग, दिस इज नॉट एवरीथिंग। यहीं की कामयाबी, यहीं की नाकामी, यहीं के दुख, यहीं के गम, यहीं की खुशियां, यहीं के ऊपर तरक्कियां करना, सब कुछ उसको लगता है यही है, बस यही जिंदगी है। दैट्स इट, नो दैट्स नॉट इट। ये तो सिर्फ वो समुंदर के अंदर डुबोई हुई उंगली के ऊपर लगा हुआ पानी है। उसके बाद आप इमेजिन करें कि कितना है जो आगे है, और उसके लिए हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। इसकी मिसाल नंबर्स में देखें तो आप सरसर हमने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 के दरमियान होगी, उसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा अगर हम जिंदगी 70 ईयर्स कर लें तो उसके और आखरत को करें, आखरत तो बेहिसाब है ना, आखरत का कोई हिसाब नहीं है, इस कंपैरिजन उस तरह से तो नहीं हो सकता, लेकिन चलो हम सबसे जो आखिरी नंबर है इंसानों की गिनती में उसको रख लें और कहें वो आखरत है। तो अब ये दुनिया की 70 साल की जिंदगी आखरत के मुकाबले में जानते हैं कैसे है कि यहां का हर सेकंड आखरत की 1,13,24,900 साल की जिंदगी है। ईच सेकंड स्पेंट हेयर इतनी इक्वल है उसके, ईच सेकंड में या तो अपनी 1,13,00,000 साल की जिंदगी को बना सकते हो या ईच सेकंड में उसको गवा सकते हो। सोचिए, इज देयर एनी कंपैरिजन? नो। अल्लाह हू अकबर। तो इसका बताया गया कि इस फानी और इस जवाल पजीर दुनिया के धोखे में ना आ जाना, ये तो मताउल गुरूर है, धोखे का ही तो सामान है, अल्लाह ने तुम्हारे टेस्ट के लिए ही तो इसको खूबसूरत बनाया है। याद रखना कि तुम्हें जहन्नुम से बच के जन्नत में जाना है, वो है असल कामयाबी जो तुम्हें हासिल करनी है। बातें बहुत ज्यादा लेकिन वक्त नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया है आयत नंबर 186 से देखें, लतुबलवुन, अलबत्ता तुम जरूर आजमाए जाओगे, फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपने मालों में भी और अपनी जानों में भी। हमने इसी किस्म की बात सूरह बकरा में पढ़ी भी है, अल्लाह ताला ने फरमाया लतुबलवुन्नकुम, लतुबलवुन्ना फी वहां पे किसी और तरह से आती, हाँ अब मेरे जहन में नहीं आ रही, तो बाहर कैफ वहां पे हम इसी बात को पढ़ चुके हैं। और वहां पे हमने क्या पढ़ा कि खौफ से भी अल्लाह आजमाएगा, जान और माल के नुकसान से भी आजमाया जाएगा, फलों से भी इंसान आजमाया जाएगा, इंसान कितनी चीजों से आजमाया जाएगा इस जिंदगी के अंदर, जो नेमतें अल्लाह ताला ने उसको दी हैं उनमें उसका टेस्ट है। और इसके अलावा यहां पे एक और चीज के बारे में बताया गया, क्या बताया गया, लतस्मउन्न मिनल्लदीना उतुल किताब मिन कबलिकुम, और अलबत्ता तुम जरूर सुनोगे उन लोगों से जो किताब दिए गए तुमसे पहले, वा मिनल्लदीना अशरकू, और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, अजन कसीरा, बहुत तकलीफ दे बातें, बहुत अजियत। यानी यहां पर इस जगह पे अल्लाह ताला ने दीन में आजमाइश की भी बात बता दी है वहां पे, और इससे पहले मालों में और जानों में आजमाइश की। माल में आजमाइश कैसे होती है, इंसान के माल में कभी नुकसान आ जाता है, कारोबार में कमी आ जाती है, इंसान के लिए अपने फाइनेंसेस संभालना मुश्किल हो जाता है, ये बिल वो फीसें वो टैक्स वो फलां चीजें, और इंसान फंस के रह जाता है। माली मुश्किलात जो है ना वो भी आजमाइश है, इसी तरह माल का वाफिर हो जाना भी आजमाइश है कि इतना माल हो जाए, अल्लाह उससे भी टेस्ट करता है कि देखे कि करता क्या अब ये बंदा। इसी तरह तुम्हारी अपनी जानों में भी, जानों के अंदर कभी इंसान के ऊपर कोई बीमारी आ जाती है, कभी इंसान से कोई प्यारा बिछड़ जाता है, कभी इंसान के कोई प्यारे की कोई तकलीफ आ जाती है, तो तुम्हारी अपनी जानों में भी है, कभी औलाद के साथ कुछ हो जाता है, तो इनमें टेस्ट ही टेस्ट हैं और बड़ी चोटें लगती हैं इंसान को, लेकिन अल्लाह ताला फिर उस वक्त देखता है ना कि तुम मुंह से क्या बोलते हो, तुम क्या कहते हो, तुम्हारे रिएक्शंस क्या होते हैं, ये है टेस्ट। अब हम ये कह के तो बैठ जाते हैं, हाँ जी टेस्ट है मेरा, ये तो मेरा इम्तिहान है, ये तो अगर आपने पहचान लिया कि आपका इम्तिहान है ना तो उसके बाद केयरफुल हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पहला मरहला आपने पूरा कर लिया कि आपने जान लिया मेरा इम्तिहान है, दूसरा मरहला ये है कि अल्लाह देखेगा आप करते क्या है। अब इसके बाद कोई हराम कोई नाजायज तरीके अपनाते हैं उस चीज से निकलने के लिए, बाज लोग जादू टूने और शिरकिया चीजों के पीछे चल पड़ते, बाज लोग और हराम मीन्स कोई रिश्वतें कोई सूद कोई हराम कमाइयों के पीछे चल पड़ते हैं, बाज लोग और कई ऐसे तरीके अपनाते हैं, बाज वावेला बहुत करते हैं, चीखते चिल्लाते बहुत हैं, बाज इसके बाद जुबान से ऐसे कलिमात निकालते हैं जो नाजेबा होते हैं। तो ये है इम्तिहान कि अब तुम बोलते क्या हो, तुम करते क्या हो। अल्लाह ने तो टेस्ट की सिचुएशन में डाल दिया। इस वक्त अगर अगर देखा जाए तो हर एक बंदा जो है वो किसी ना किसी इम्तिहान से गुजर रहा है। यानी मेरे पास तो इतने मसाइल आते हैं ना लोगों के, तो मैं देखती हूँ कि लोग बहुत बहुत तरह की चीजों में आजमाए गए हैं। खास तौर पे औलाद में बहुत लोग आजमाए जाते हैं, सेहत के में बहुत आजमाइश आती है, और इंसान उस वक्त सोचता है कि हाय मैं ही रह गई थी। ये आता है दिमाग के अंदर ख्याल, और शैतान लाता है ये, मैं ही रह गई थी, मेरे ऊपर ही आनी थी। लेकिन उस वक्त समझने की जरूरत है कि अल्लाह मुझे आजमा रहा है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ व नक्सिन मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात व बशीर सबीरीन। ये मुझे याद आ गई आयत, सूरह बकरा में थी, हमने पढ़ी थी 155, कि अल्लाह ताला कहते हैं बशारत दो किन को, सबर करने वालों। और कितनी सारी चीजें बता दी हैं हम तुम्हें, टेस्ट करेंगे, उनमें टेस्ट होगा, आजमाइश आएगी जब। और देखें वहां पे भी और यहां भी आप देखें कितना एम्फोसिस है, जरूर आजमाए जाओगे तुम, जरूर। ये तो आजमाइश आनी है। फुजैल बिन अय्यास जो थे ना, वो इस तरह की आयतें पढ़ते थे ना, आगे भी आएंगी आजमाइश की, तो वो बड़ा रोते थे, कहते थे अल्लाह तू हमें आजमाना ना, कि तूने अगर हमें आजमा लिया ना तो हम रुसवा हो जाएंगे और हमारे पर्दे खुल जाएंगे। और वाकई ये हमारे ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, हमारे ईमान की बातों पे, हमारे और बड़े बड़े हमारे दावे हैं। बातें तो हमसे जितनी मर्जी सुन लेना, तो इतने बड़े हम दावे करते हैं, लेकिन जिस वक्त आजमाइश आती है उस वक्त वाकई पोल खुल जाते हैं। तो वो कहते हैं हमारे पर्दे खुल जाएंगे। वो रोते थे ये पढ़ के, फुसैल बिन अय्यास जैसे इंसान, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और वला तस्माउन, और तुम जरूर सुनोगे इनसे, किन से, उतुल किताब मेरे कबले को, यानी अहले किताब से, ये क्रिश्चियन और ज्यू से और मुशरिकों से, बड़ी अजियत की बातें सुनोगे। और क्या हम सुनते नहीं है, क्या हम देखते नहीं है रवैये? इस्लामोफोबिया क्या है, फिर मुसलमानों को टेररिस्ट कह देना, उनको पता नहीं क्या क्या अलकाबात दे देना, एक्सट्रीमिस्ट फलां, इस तरह की बातें करके उनको तकलीफ देना। बातों से भी तकलीफ होती है, अजियत में बातें भी आ जाती हैं, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडास भी आ जाते हैं, इसके अंदर फिजिकल टॉर्चर्स भी आ जाते हैं। और बाज मुल्कों में ऐसा है जहां पे किस लिए अजियत दी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला हुआ। तो अल्लाह ताला ने तो ये कुरान में फरमा दिया, तुम जरूर सुनोगे इनसे ऐसी अजियत वाली बातें, तुम जरूर तुम्हारे पर आएंगी वर्बल परसिक्यूशन, वो ये तो सुननी पड़ेंगी तुम्हें, उन्होंने चैन से नहीं बैठना। और ये उस वक्त भी था, यहूदियों से ऐसी ऐसी बातें सुनते थे मुसलमान, और इससे क्या बड़ी बात हो सकती कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम को भी सुननी पड़ती थी। मैं और आप उनसे क्या बेहतर, ये कोई नई बात नहीं हुई कि हम कहें आज ऐसे हो रहा है, ये उस वक्त भी था। कि बुखारी शरीफ में आता है इसी आयत की तफसीर में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पर सवार होके जा रहे थे। एक तो आप ये नोट करें गधे पे, हालांकि उस वक्त भी लग्जरी जो सवारी थी ना वो घोड़ा थी, गधा कोई जैसे समझ लें कि आज कोई साइकिल पे जा रहा हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आर नहीं कभी समझी कि मुझे शर्म आती लोग क्या कहेंगे, मेरे लिए तो बहुत आला नस्ल का कोई घोड़ा होना चाहिए, नहीं गधे पर जा रहे हैं। और हजरत उसामा को पीछे बिठाया कि साद बिन अबादा की अयादत के लिए बनू हारिस के कबीले में तशरीफ ले जा रहे थे। तो ये वाकया जंगे बदर से भी पहले का, रास्ते में एक मजलिस देखी जो जिसमें मुसलमान भी थे, यहूदी भी थे, मुशरिक भी थे, और अब्दुल्ला बिन उबई भी था जो अभी तक तो मुसलमान नहीं हुआ था, वो तो पहले मुसलमान होके भी तो खैर काफिर ही था, लेकिन अभी तो वो मतलब कुफर पे था अपने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी से जाहिर है डस्ट वगैरह उड़ी, गर्दो गुबार उड़ा, तो अब्दुल्ला बिन उबई ने नाक पे कपड़ा रख लिया और बहुत ही नाजेबा बातें की, कहने लगा ये इतना गुबार ना उड़ाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास पहुंच ही चुके थे, सवारी से उतर आए, सलाम किया, उनको इस्लाम की दावत दी, कुरान की चंद आयतें सुनाई, तो आगे से कहने लगा ये आपका तरीका हमें कोई पसंद नहीं है, आपकी बातें हक होंगी लेकिन क्या वजह है कि आप हमारी मजलिसों में आके हमें तकलीफ देते हैं, जाएं अपने घर जाके बैठे, जिसने सुननी होगी वहां पे आके सुन लेगा आपकी बातें। अल्लाह अकबर। ये सुन के अब्दुल्ला बिन रवाहा, मुसलमान भी तो जाहिर है वहां पे थे, तो उन्होंने कहा या रसूल आप हमें जरूर बताएं, आप जरूर हमारी मजलिसों में आए, हमें तो बड़ी चाहत है कि आप आए और हमें बताएं। और इतनी इस बा इन बातों के ऊपर ना आपस में उनकी यानी ऐसे होने लगा था कि बस लड़ाई शुरू हो गई, बुरा भला कहने लगे और करीब तक खड़े होकर लड़ना ही शुरू हो गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए सब्र किया, समझाया बुझाया, ये नहीं कि चलो मुसलमानों तुम बैठे क्यों हो या तुम इसका गिरबान पकड़ो, इसने की क्या जरूरत है कि ये बोले, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया बुझाया, अमनो अमान कराया, सारे खामोश हो गए, आप अपनी सवारी पे चुप करके बैठ के हजरत साहब के साथ तशरीफ ले आए के घर में तशरीफ ले आए, उनको आके कहा कि इस तरह उसने किया, तो उन्होंने कहा कि इनको जाने दें, आपको पता है वो तो आपसे वैसे ही जेलस है इतना ज्यादा, वो तो खुद सरदार बनना चाहता था तो अब उसको रंज बहुत है इसलिए वो ये ऐसा करता है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप कोई अनोखे नहीं है जिनको ऐसी कोई तकलीफें सुननी पड़ती हैं कि मीडिया आपके खिलाफ है, फलाना आपके खिलाफ है जी, वो हमारे खिलाफ बातें करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था जो ये यहूद और नसारा और मुशरिकीन पहले से इस तरह के काम करते थे, ये नई बातें नहीं है। अभी आपने पीछे बात सुनी, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होगा उसके लिए तो क्या दिल पे गुजरेगी कि कोई अल्लाह के लिए ये बात कहे कि वो फकीर है और हम गनी हैं, क्या इससे तकलीफ नहीं होती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसी बातें करे, लेकिन वो बर्दाश्त करते थे। क्या इसका गुर बताया, क्या करो तुम भी उनको गालियां देना शुरू कर दो, वो तुम्हारे कुरान को जलाने के लिए खड़े हो जाते, तुम भी उनकी बाइबल जलाना शुरू कर दो, वो तरह तरह की तुम्हारे लिए ऐसी गलीज बातें करते हैं, तुम्हारे नबी के ऊपर बातें ऐसी करते हैं, तुम भी क्या उनके नबी पे करना शुरू कर दो, नहीं, तुम्हें क्या बताया अल्लाह ने, वह इन तस्बीरू व तत्तकू, तुम सबर करो, तुम तकवा इख्तियार करो, फइन्ना ज़ालिका मिन अज़्म उमूर, तो बेशक ये बड़े हिम्मत के कामों में से, कभी कार्टून बना रहे हैं, कभी कुरान को जलाने खड़े हो गए, कभी मीडिया वॉर आज ऐसी है कि मतलब यानी मैं कहती हूँ आजकल जंग ही ये है मीडिया पे जो है। अब इसके अंदर मुसलमानों के दिल इतने गमगीन होते हैं, इतने ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं, उनको होता है कि हम कैसे रिवेंज लें, हम बस कैसे इनको बदला लें, तो अब हम भी कोई तखरीबकारी करें, नहीं, वो कहा गया कि ये तो तुम सुनोगे, ये भी तुम्हारा इम्तिहान है, ये भी इम्तिहान है, मालों में भी इम्तिहान है, जानों में भी इम्तिहान है और इसमें भी इम्तिहान है, तुमने क्या करना है, अल्लाह ने तो तुम्हें नुस्खा बता दिया, सबर और तकवा। पूरे मक्की दौर में आप देखें क्या मुसलमानों ने कोई अजियत ऐसी थी जो उन्होंने ना सही हो, बातें सुननी तो बहुत छोटी बात रह जाती है, कौन सा टॉर्चर ऐसा था जो उन्होंने ना बर्दाश्त किया। और आज भी दुनिया में ऐसा है और ऐसी भी जगह है जहां पर लॉकडाउन में है मुसलमान, और कितने महीने हो गए, तो मुशरिकों से भी सुनोगे और उनसे भी। और ये याद रखिए उस जमाने के जो थे ना उतुल किताब यानी यहूदी जो थे, वो थे समझ लें कि जो इल्म वाले, जो दीनदार लोग जिनको आप कहते हैं ना दीनदार, नेक लोग, दीनदार लोग, ये वो थे, और मुशरिक तो खैर आम मुशरिक थे ही। आज के वक्त में भी आपको उन लोगों से, अब यहाँ पे यहूद नसारा की जगह आप रख लें जो दीनदार यानी मतलब जो मुसलमान है, उनसे भी आपको बातें सुननी पड़ेंगी, जी हाँ, वो गैरों से तो सुननी पड़ेंगी, इनसे भी सुननी पड़ेंगी, कभी आपको मुल्लानी कहेंगे, कभी आपको किसी और तरह के अलकाबात देंगे, तुम तो ये बन गई हो, तुम तो ऐसी हो गई हो, तुम तो फनेटिक हो, तुम तो ये हो, बहुत सारी चीजें सुननी पड़ेंगी, फिर आपने क्या करना, लड़ने खड़ी हो जाएंगी उनसे, क्या करेंगी फिर, या छोड़ देंगी सब कुछ। यही तो बताया गया तस्बीरू, तस्बीरू क्या है, सबर मैंने आपको बताया था बहुत तरह का होता है, नंबर 1 सबर क्या है, अल्लाह की इताहत के ऊपर सबर करना, कि नेकी पे जम जाना, डट जाना, ये भी एक सबर है जो यहां पे कहा गया। तुमने ये नहीं करना कि उनकी बातें सुन के तुम भाग ही जाओ, नहीं, हाँ देखो इतनी बातें बना रहे हैं, देखो आज के हालात नहीं है, देखो ये कितना प्रोपोगंडा हो रहा है, नहीं, हम तो भाई खैर बात कहते हैं इस दिन को, नहीं तुम सबर करो। ये सबर की एक किस्म है कि डट जाओ, जम जाओ। और दूसरा सबर क्या होता है? गुनाहों से बचना भी, ये भी सबर होता है, क्योंकि आप सबर के बगैर गुनाह से भी नहीं बच सकते। गुनाहों को नहीं करना, मैंने चाहे मेरा कितना दिल कर रहा, मुझे अच्छे लगती है ये चीज, ये पहनना, ये खाना, ये ऐसी चीजें मुझे सब पसंद है, लेकिन मैंने नहीं करनी, सबर है ये। और फिर तीसरा सबर तो आपको पता ही है, मुसीबतों पे, गमों पे सबर करना। तो ये तीन तरह के सबर है। यहां पे कौन सा सबर? तुम डट जाओ, तुम भाग ना जाना, तुम घबरा ना जाना, तुम छोड़ छाड़ ना देना सब कुछ। वह तत्तकू, और तुम तकवा इख्तियार करो। क्या बताया था मैंने आपको तकवा का? आप तो मेरे ख्याल याद हो जाना चाहिए आपको, कि हर लम्हा अल्लाह की नाराजगी से बचना हमारी जिंदगी का मकसद बन जाए, और हर लम्हा अल्लाह की रजा पे चलना हमें महबूब हो। बस ये है तकवा। कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि तकवा तकवा पढ़ते रहे, पूरा कुरान खत्म कर दिया, तकवा ही ना समझ आया तो क्या आया? तकवा की गर्दान रटते रहे, और तकवा मैंने अप्लाई कैसे करना है जिंदगी में, मैंने कैसे मुत्तकी बनना है ये समझ ही ना आए, तो फिर क्या तकवा हुआ? लेकिन अल्लाह ताला ने साथ फरमा दिया। ये बड़े हिम्मत के कामों में से, ये हर कोई नहीं कर पाएगा, ये इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए कि इंसान खुद को नेगेटिव रिएक्शन से भी बचाए, और फिर जमा भी रहे, हर वो काम करता भी रहे, अपने कामों को छोड़ के नहीं बैठ जाए। क्योंकि बाज दफा ऐसे होता है जब नेगेटिव प्रोपगेंडास अपने की तरफ से आते हैं, ये तुम आपने क्या शुरू कर दिया पढ़ने पढ़ाने का काम, ये आपने क्या, जब ऐसी बातें आती ना तो इंसान कहता है अच्छा मैं भी अब इसको कैसे जवाब दूं। अब जवाब देने की जरूरत नहीं है। देखें क्यों नहीं जरूरत, क्यों है सबर करना और तकवा क्यों कहा गया पता है? क्यों क्यों जवाब नहीं देना? इसलिए कि अगर आप जवाब देने में लग गए ना, तो इतने आपके सामने चीजें आएंगी कि आपकी सारी एनर्जी इनको जवाब देने में ही लग जाएगी, और आप अपने जो काम है ना वो कभी नहीं कर सकेंगे। वो इस बात को मैंने खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा। बहुत लोग बातें बनाते हैं, बहुत लोग कामों पे क्रिटिसाइज भी करते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज कर ली कि मैंने नहीं जवाब देना। कोई कहता है मेरे तक पहुंचती भी है बातें, फलां ने ये कह दिया, फलां वो कर रहा है, फलां आपको ऐसे कह रहा है, तो क्या हुआ? वो कहते रहे। अल्लाह के नबी को नहीं लोगों ने छोड़ा, अंबिया को नहीं छोड़ा, अब हम क्या इनको जवाब देते रहे? अब इनको जवाब देने में अगर आप लग जाए तो क्या आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या उन्हीं सोचों में सोचते रहे अच्छा मैं इसको कैसे जवाब दूं, अच्छा मैं क्या करूं, इसका क्या इलाज करूं? नहीं, आप अपना काम करते चले जाए। ये है सबर, जमे रहे जो कर रहे हैं, और वो खुद ही बोल बोल के कब तक बोलेंगे, एक दिन तो चुप कर ही जाएंगे ना। हाँ तकलीफ देती हैं ये चीजें, इसीलिए इसको कहा गया ये हिम्मत के कामों में से है। ठीक है, तो कितना बड़ा सबक हमें मिला ना, लिया कि नहीं सबक इससे आपने? पढ़ के आगे नहीं जाने चले जाना, देखिए पढ़ के उसको समझना है, इसको अपने अंदर उतारना है। ये ना हो कि कल को ऐसी कोई बात आए आपके सामने और आपको भूल ही गया हो कि हमने ये आयत पढ़ी थी, तो फिर वो पढ़ने का फायदा नहीं है। या तो हाईलाइट कर लें इसको, टाइम टू टाइम पढ़ते रहें। वَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, और जब अल्लाह ने पक्का वादा लिया, किन से? अल्लदीना ऊतुल किताब, उन लोगों से जो दिए गए किताब। क्या वादा लिया था? यहूदो नसारा से क्या वादा लिया था? लَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, कि तुम बयान करोगे इसको, किसको? किताब को। किताब की पहले बात आ रही ना, वो दिए गए किताब, तो तुम इस किताब को बयान करोगे, किसको बयान करना है? लिन्नास, लोगों के लिए, जो उनके वक्त के लोग थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना इनके पास इमामत की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। इमामत ये नहीं कि कोई मस्जिद की इमामत थी, मतलब इस दीन को तुमने लेके आगे चलना है, तो तुमने लोगों को बताना है, पहुंचानी है उन तक किताब। वला तक तुम होना, और तुमने छुपाना नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? फना बधू हु, उन्होंने तो किताब को उठा के फेंका अपने पीछे, अपनी पीठों के पीछे, मतलब क्या फिजिकली उठा के फेंक दिया? नहीं, वो तो इतनी इज्जत करते थे अपनी किताब की, वो तो आम लोगों को पढ़ने भी नहीं देते थे, उनके बड़े बड़े उलमा ही पढ़ते थे, वही लोगों को तक बयान करते थे, कहते थे नहीं आप नहीं इस काबिल हैं कि आप ये किताब पढ़ें, ये तो मतलब है कि बड़े पहुंचे हुए लोग ही पढ़ सकते हैं, ये बड़े बड़े उलमा, तो वो तो इतनी इज्जत करते थे, कुरान कह रहा है कि उन्होंने पीठ पीछे फेंक दिया, फिजिकली नहीं फेंक दिया, पीठ पीछे फेंकने का मतलब क्या है? मतलब ये किसको बिल्कुल भुला दिया, इग्नोर कर दिया, ऐसे जैसे आप अपने पीछे कोई पीछे फेंक दें तो क्या होगा, आपको नजर नहीं आएगी ना, आपको जो आपके आगे चीज है वो नजर आती है, तो जब उन्होंने अपनी किताबों को पीछे फेंक दिया तो मुराद क्या है, उन्होंने बिल्कुल भुला दिया, इग्नोर, दे डिडंट इवन केयर, जिस चीज की आप केयर ना करें उठा के पीछे फेंक दें ना, जैसे आप उठा के कोई किताब पीछे फेंक दें तो क्या मतलब है कि आपने उसकी कोई केयर नहीं की, वश्तरऊ बिही थमनन कलीला, और उन्होंने इसको बेच दिया थोड़ी कीमत पे, वो कैसे बेचा, क्या पैसे लेते थे और फिर वो बेचते थे उस किताबों को, सेल करते थे किताबें, नहीं मतलब क्या है, फतवे बेचते थे, फतवे भी बेचते हैं जनाब, कि कोई आया किसी ने सवाल किया, अब वो कह रहा जी हमारे तो ये बहुत बड़ी औरत है जिसने चोरी कर ली है, अब आप इसका तो कोई हल निकालें, तो अब इसका तो नहीं, हमने इसको ऐसी सजा थोड़ी देनी है, बदनाम हो जाएगी ये, तो अब ऐसा करें कोई कहीं से कुछ ऐसे निकाल के चलो उसको कुछ और ही बता दिया, नहीं इसके ये भी निकलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है, इसका इस तरह करके उसको सेटिस्फाई करके भेज दिया, अब क्या वो तो इसकी आवभगत करेगा ना, वो तो इसका फैन बन जाएगा ना, सिर्फ पैसे नहीं देना होता, और खैर पूरी दुनिया भी कोई दे दे तो वो समनन कलीला ही है, वो उसको लाद भी दें उस मुफ्ती उस आलिम को पैसों से ओहदों से गाड़ियों से जायदादों से, वो समनन कलीला ही है, क्योंकि उसने जो बेचा वो अल्लाह की आयात है, और उसके बदले में जो कीमत ली वो तो थोड़ी है, और वैसे भी पूरी दुनिया आखरत के मुकाबले में क्या है, मैंने जो आपको हदीस बताई थी, समंदर में उंगली डबो के देख लें आपका पता चल जाएगा क्या है, तो ये काम करने लगे, अल्लाह तआला ने फरमाया फबीसा मा यश्तरून, कितना बुरा है जो ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, ये कैसी ये इनकी ट्रेडिंग है, क्या ट्रेड किया इन्होंने, उनकी मनमाने फतवे दे दिए ताकि वो खुश हो जाए, और उसके पीछे चौधराहटे ले ली, ओहदे ले लिए, पैसे ले लिए, ये है बस। याद है आपको कि मैंने सूरह आले इमरान जब शुरू हुई थी तो आपको बताया था कि वो जो वफादार आ था उस बंदे ने क्या कहा था अपने भाई से, उसने कहा था अगर हम इनको मान लेंगे, ये हैं तो सच्चे ही मान लेंगे, तो ये हमारी ये ओदों का क्या बनेगा, ये जो लोग हमारे आगे पीछे हो रहे हैं इसका क्या बनेगा, तो छुपा लेते थे, नहीं बताते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां लोगों को, तो इन्होंने वो उस वादे को तोड़ा जो अल्लाह ने इनसे लिया था, और झूठ कह रहे हैं कि हमसे तो अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि वो आ गए और आके आपके वो जो कुर्बानी है उसको खा जाए, ये आपने पहले पढ़ी है ना आयतें, वो झूठ बात थी, असल तो अल्लाह ने इनसे ये वादा लिया कि तुम अपनी किताब को बयान करो और जिसमें साफ निशानी है आखिरी नबी की, हत्ता कि उनका नाम तक भी अहमद है उसके अंदर लिखा हुआ, तुमने उसको छुपाया और बस इस तरह के फतवे देते रहे लोगों को। अब आप ये देखें उनकी तो बात हो गई, अहले किताब तो थे ही ऐसे, जरा अपने गिरेबान में भी हम झांकते हैं, हमें कहा गया कि हम बयान करें कुरान को या नहीं, या उठा उठा के रख दें ताक में अलमारियों के ऊपर गिलाफों के अंदर बंद करके, कोई ना पढ़े इसको, आप नहीं इस काबिल के आप पढ़े, या हमें भी कहा गया कि हम इसको बयान करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी तो हज्जतुल विदा में भी कह के गए कि लोगों जो यहाँ पे हो ना अपने से आगे वालों तक पहुंचा देना, वो उनसे आगे वालों को पहुंचाए, हो सकता है जो आगे सुनने वाला वो उससे ज्यादा अमल कर ले, तो हमें तो बताया गया कि आपने पहुंचाना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी कि अल्लाह उसको तरोताजा रखे जो मेरे से बात सुने उसको आगे पहुंचाए, तो हमने भी क्या किया, हमने भी पहुंचाना तो दूर की बात, क्या हमने यही नहीं किया, फनबदूहु वरा अज़हूरिहिम, क्या हमने भी अल्लाह की किताब को पीठ पीछे नहीं डाल दिया, हमारे घरों में कुरान कहाँ है, या आज तक कहाँ थे, चलो अब तो एक आपने कोर्स ले लिया आपको चारों ना चार खोलना ही पड़ता, इससे पहले कितना खुलता था, कितनी समझ थी, कितना लोगों को बताते थे, शर्माते हैं बताते हुए। शर्म इसलिए आती है कि लोग समझेंगे कि ये कितनी दीनी है, मुझे मुलानी ना कह दे। शर्म आती है कुरान की बात करते हुए, बहुत दीनी ना समझ ले मुझे। मैं इसी तरह आ रहा हूं कि लोग मुझे बहुत फैशनेबल समझे और बहुत अप टू डेट समझे, तो मैंने ऐसी अल्लाह रसूल की बातें शुरू कर दी तो फिर तो लोग क्या सोचेंगे। ये चीजें हमें रोकती हैं, या इतनी झिझक है अपने अंदर कि बतानी ही नहीं। दुनिया जहान की बातें कर लेंगे, ये नहीं करते। और हदीस शरीफ में आता है कि जिस शख्स से इल्म का कोई मसला पूछा जाए और उसको पता है कि ये क्या है, लेकिन वो उसको छुपा ले, तो कयामत के दिन उसको आग की लगाम पहनाई जाएगी। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। कि हमारी भी जिम्मेदारी है, ये यहूद के उलमा के ऊपर अल्लाह ताला ने फर्दे जुर्म आयद की है। और हम सोच लें कि अगर हम भी एग्जैक्ट सेम काम करते हैं तो फिर हमारा क्या इससे डिफरेंट हमारे लिए कोई बात है। किसी भी नफामंद इल्म को इंसानों से छुपा लेना बुरा है, लेकिन खास तौर पे दीन की बात को छुपाना, आपसे तो इतना कहा जाता है कि आप जाके लोगों तक यही पहुंचा दें कि चलो और मुझे कुछ नहीं आता, आओ आप लोग आगे कुरान सीख लो, वो भी नहीं पहुंचाते, वो भी नहीं किसी को बताते कि मैं भी कुछ पढ़ रही हूं। क्योंकि ये ना वो समझेंगे ये पता नहीं बहुत हमारे काबिल नहीं रह गई हमारी दोस्ती की। तो इल्म वालों की जिम्मेदारी है वो आगे बताएं। उम्मते मुहम्मदिया से भी सेम अहद लिया गया है, इसके बाद भी अगर वो यही काम करते हैं तो फिर अंजामे कार सोच लीजिए। हजरत अली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर तुम्हारी बात से कोई एक बंदा भी ए अली हिदायत पा गया तो ये सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। उस जमाने में सुर्ख ऊंट बहुत बड़ी कमोडिटी थे, बहुत बड़ी चीज समझे जाते थे, जैसे आज समझ लें कि कोई बड़ी गाड़ियां, बहुत महंगी गाड़ियां, वो उन सुर्ख ऊंटों से बेहतर है कि एक बंदा भी हिदायत पा जाए। लेकिन कितनी बयान करने की चाहत है हमें, कितना इल्म फैलाने की हमें शौक है, तो हम तो इस मामले में इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं ना फिर। और नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखें, कोई मौका नहीं, ऐसा नहीं था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेक्चर देने बैठ जाते थे, बातों बातों में उनको सिखा जाते थे, बातों बातों में बात कह जाते थे, चाहे सफर में है चाहे हजर में है, चाहे मुसीबत का वक्त है, परेशानी का वक्त है या खुशी का वक्त है, चाहे किसी की मर्ग है चाहे किसी की शादी है, चाहे बच्चे की पैदाइश है या किसी का दुनिया से जाना है, हर मौके पर आप देखेंगे। जंगों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इल्म बांटा, कैसे इसलाह की, कैसे तरबियत की, चाहे फाते बन के रहे और चाहे ऐसी कोई शिकस्त का सामना करना पड़ा जैसे हम भी हमने पढ़ा, तो उन्होंने तो कभी भी इस चीज से फरागत नहीं ली कि ये छुट्टी है बस। तो जरूरी नहीं होता कि क्लास में बैठे भी आप कोई बात कर रहे हैं या ग्रुप्स में ही करें, इसको जिंदगी का एक तरीका बना लें। हमने फैलाना है इल्म को, अंधेरों को दूर करना है। जिहालत तभी दूर होगी जब आप इल्म के चिराग जला देंगे, वरना ये कभी दूर नहीं हो सकती। ला तहसा बनना, और देखिए अगला मैसेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट। अब देखिए हर हर आयत हीरा है, क्या करें, एक एक आयत में सबक है। पहली आयत से भी आपने सबक ले लिया, दूसरी आयत में भी आपको आपको कोई काम करने को मिला या नहीं मिला, क्या करना है आपने, प्रैक्टिकली समझ आ रही है कि नहीं। जिंदगी में कदम कदम पे इम्तिहान आने हैं जनाब, परेशान नहीं होना, ये अल्लाह ने वादा कर लिया, ये आपने पढ़ लिया, पहुंचाना है आगे। और फिर उसके बाद ला तहसबन अल्लदीन यफरहून बिमा अतौ, कभी हरगिज़ ना ख्याल करें, जो वो जो खुश हो रहे हैं ना साथ उसके जो वो लाए, वो यहिब्बून अन यहमदू बिमा लम यफअलू, और वो चाहते हैं कि वो तारीफ किए जाएं उस पे जो कि उन्होंने किया, फला तहसबन्नहुम बिमफाजत मिनल अज़ाब, तो कभी ना गुमान करें कि वो कामयाब होंगे अजाब से, उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। किन लोगों की बात की जा रही है? कि बड़े खुश होते हैं जो वो लाए, यानी कोई चीज अगर कोई कभी उनको कोई नेकी का काम करने की तौफीक मिल नहीं जाए तो इतना इसके ऊपर खुशियां और इतना इसके ऊपर बड़ी अपनी बातें और अपनी तारीफें और ऐसे करते हैं। और अगर कोई चीज नहीं भी की होती, पहले तो जो किए होते हैं उसकी बड़ी धूम मचाते हैं, हम तो ये करा हमने कारनामा, और कुछ नहीं भी किया होता तो उस पे भी चाहते हैं हमें हमारी तारीफें होनी चाहिए। इसका थोड़ा सा पहले शाने नजूल भी समझ लें आप, उससे आपको ज्यादा बात समझ आएगी। कि एक तो अहले किताब की रेफरेंस से देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे किसी बारे में आपने सवाल किया तो उन्होंने उसका गलत जवाब दे दिया, और बाहर निकल के सोचने लगे हमने सवाल का जवाब तो गलत बिल्कुल दिया है और इन्होंने मान भी लिया है, तो अब इनको वैसे चाहिए कि हमारी तारीफ करें और हमारी हमारी कोई मतलब अच्छी शोहरत बयान करें। तो एक तो अहले किताब के उससे रेफरेंस से, दूसरे बुखारी शरीफ में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जाया करते थे तो मुनाफिकीन आपको पता अपने घरों में बैठे रहते थे, नहीं जाते थे, और बड़े खुश होते थे कि हम लड़ाई से बच गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते थे तो अब क्या करें, अब तो बड़ी मुसीबत हो गई, अब हम क्या जवाब देंगे? तो ये आके इतने झूठे सच्चे ऐसे एक्सक्यूजेस बनाते थे, कसमें खा खा के कहते थे हम तो ये हो गया था वो हो गया था, हम तो चाहते थे लेकिन बस ये हो गया ऐसे हो गया और हाँ हम नहीं आपके साथ आ सके। और इसके बाद जबकि पीछे रहे कुछ नहीं किया, तब भी चाहते थे कि हमारी तारीफें होनी चाहिए। यानी ये एक तरीका कार यहूद का भी था, ये बस हमारी तारीफें, हालांकि गलत जवाब दिए। और मुनाफिकीन की एक ये बहुत बड़ी बात थी कि वो हमेशा ये चाहते थे कि चाहे काम कुछ किया या किया नहीं, अगर कुछ कर लिया तो उसके ऊपर तो बहुत ही अपनी धूम मचानी, और अगर नहीं भी किया तो बस हमारी तारीफें होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही बुरी चीज है। देखें, तारीफ चाहना ये तो वैसे इंसान का अमल ही गारत कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, वो हदीस है, मेरे सामने तो इस वक्त नहीं है कि किसी की भी मुंह पे तारीफ ना करो, ये ऐसे ही है कि तुमने उसके मुंह पे मुंह में खाक डाल दी, मट्टी डाल दी उसके मुंह के ऊपर। कि किसी की ऐसी तारीफ करना उसका दिमाग खराब कर सकती है, उसका बेड़ा गर्क कर सकती है, उसके अमल जाया करा सकती है, उसमें तकब्बुर आ सकता है, और जिसकी वजह से वो तो डूब गया ना। तो अगर तारीफ करनी है, हाँ किसी की हौसला अफजाई के लिए तारीफ की गई, वो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, लेकिन ऐसी खुशामदी तारीफें करना इसकी कोई वो नहीं मिलती। देखें, जो भी इंसान करता है वो अल्लाह की तौफीक से करता है, अगर उसकी तारीफ करनी हो तो उसके पीठ पीछे की जाए, पीठ पीछे लोग बुराइयां करते हैं, मुंह पे आके तारीफें आप तो अच्छे ही बहुत हैं, लेकिन जब वो नहीं होता तो कभी उसकी तारीफ नहीं याद आती, तब उसकी बुराइयां याद आती। ये किस किस्म की तारीफ है? तो मुनाफिकीन क्या चाहते होते थे, वो चाहते थे कि उन बातों का भी क्रेडिट ले लें जो उन्होंने की ही नहीं है, उन चीजों पे भी शेखियां मारते थे जो थोड़ा बहुत कुछ कर लिया। ये चीज को अल्लाह ताला ने फरमाया, इसको अच्छा ना समझो, ये ना समझो कि इसकी वजह से वो अजाब से बच जाएंगे, उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। तो ये अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ही बुरी चीज है कि कोई ऐसा चाहे कि उसकी तारीफें की जाएं जबकि उसने काम किया भी ना हो। हम अपने आप को देखें, क्या हम कभी ऐसा चाहते हैं कि हमने कोई काम किया भी नहीं है और हमारी तारीफें होती रहे? बहुत दफा ऐसा होता है, हमने कोई खाना नहीं पकाया, किसी और ने भेजा हुआ था, लेकिन हम प्रेजेंट करके तारीफें खुद ले रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं, बताते नहीं हैं कि ये तो मैंने नहीं बनाया, उसके ऊपर बड़ी क्रेडिट खुद ले लेना, काम हमने नहीं किया, काम किसी और ने किया, लेकिन उस काम के ऊपर तारीफ अपनी करवाना और तारीफ अपनी चाहना। अब जैसे आप ये पढ़ते हैं, कोई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ेंगे, कोई कुछ भी नहीं पढ़ते, और फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन का वक्त आता है तो वो चाहते हैं कि हमारी भी ऐसे ही तारीफें की जाएं जैसे दूसरों की जाती हैं। या हमें भी वो ही उसी तरह से सर्टिफिकेट और अवार्ड्स दिए जाएं जैसे दूसरों को दिए जा रहे हैं। किस बात पे? नहीं बस होनी चाहिए। यानी बहुत दफा जिंदगी में ऐसे मरहले आते हैं, मसलन कोई आइडिया बहुत कामयाब हो गया और लोग कहते हैं आपका आइडिया बड़ा अच्छा, वो उसका आइडिया होता ही नहीं, बताते नहीं कि मेरा नहीं आइडिया, तो फलां का आइडिया है, ये तो उसको क्रेडिट जाता है जिसने आइडिया दिया। वो तो चुप करके बैठते हैं, अच्छा मेरी तारीफें हो ही रही हैं, होने दो। यानी हरीस रहते हैं इसके के बस हमारी, चाहे काम में एक हमारे जरा सी भी पार्टिसिपेशन ना हो फिर भी हर काम में क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं और इस पे फूलते रहते हैं। थोड़ा सा भी करके चाहते हैं कि बहुत तारीफ हो ताकि लोगों में मैं बड़ी बन जाऊं, इसीलिए चाहते हैं ना लोगों में मेरी इज्जत बन जाए। हालांकि जो अल्लाह के लिए करना है तो फिर ऐसे करने वाले को तो परवाह ही नहीं होनी चाहिए, किसने सुना किसने नहीं सुना, किसने तारीफ की किसने नहीं तारीफ की, यहीं से तो आके पता चलता है कितना काम अल्लाह के लिए था कितना काम दूसरों का, दूसरों के लेक्चर नोट कर करके उनकी बातें बता बता के तारीफें खुद लेते रहना। और लेक्चर कहीं से नोट किया मैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों की किताबों पे अपना नाम करवा के और पब्लिश करा लेते हैं और उस पे खुद तारीफें लेते हैं। तो ये सोचें कि मुनाफिकीन के रवैये थे कि हमारी तारीफें हो, लोग जमीन आसमान के कलाबे मिलाए, हमारी मदा सराई हो, खुशामदी पसंद करते थे। कई लोगों को पसंद आती है कि खुशामदी खुशामदी टोला हमारे इर्द गिर्द है। तो ये सिर्फ दीन के कामों के लिए बात नहीं हो रही, दुनिया के कामों में भी। नंबर वन वो लोग हैं जो काम उन्होंने किया उसके बाद उस पे इतराते हैं, भड़के मारते हैं, अपने कारनामे इसको समझते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने तो ऐसा कहा, मैं तो वहां गई, मैंने, फूलते रहते हैं। और दूसरे वो हैं जिन्होंने कोई काम किया भी नहीं है फिर भी उनको बस यही पसंद आता है कि लोग हमें बस बड़ा समझते रहे और बड़ी अच्छी हमारी बातें होती रहे, चर्चे हमारे अच्छे हों। और बाज लोग तो दीन का इल्म भी इसलिए लेते हैं कि हम लोगों में जरा इतराएं, लोगों में जरा, लोगों की नजरों में जरा नजर आए कि बड़ा नॉलेज है इसको, हम बातें ऐसी करें ताकि लोग भी कहें कितनी नेक है वैसे ना ये, कितनी नेकी की बातें करती है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह बाज लोग चीटिंग करके नंबर ले लेते हैं, उसके ऊपर उनकी तारीफें हो रही, तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया, चीट किया बस, उस पे तारीफें सुन के खुश होते हैं। ये चीजें इंसान को कामयाब नहीं करा सकती। अलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, सारा क्रेडिट तो उसके लिए है वो जिसके लिए बादशाहत है आसमानों और जमीन की, तुम तो ना करके भी चाहते तुम्हारे लिए क्रेडिट हो, सारा क्रेडिट हर चीज अगर इंसान कुछ कर भी ले तो उसकी दीवी तौफीक से किया है। इसके बाद यही सोचना चाहिए कि सारी तारीफ तो उस अल्लाह के लिए है जो जमीन और आसमान की बादशाहत का मालिक है और जो आला कुल्ली शैइन कदीर है, कुदरत रखता है हर चीज के ऊपर, कोई चीज उसको आजिज नहीं कर सकती, थका नहीं सकती किसी चीज के लिए, वो ये नहीं है कि वो नामुमकिन हो उसके लिए। अब यहां तक मुकम्मल हो गई ये आयतें। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة سنة.
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير